समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, ले आए हम आपके लिए वो तमाम जानकारियां जिनका है आपसे सरोकार। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीष शर्मा और मेरे साथ हैं सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुनीष, एंड अ गुड डे टू एवरीबॉडी। वी आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुनीष शर्मा, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटा इन इंडिया, एंड वी ऑल्सो ब्रिंग यू रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first.
राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन सिटीजन्स टू अपहोल्ड द ड्यूटीज एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द विजन ऑफ अ डेवलप्ड एंड एम्पावर्ड नेशन।
श्री मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का किया उद्घाटन, कहा भारत निवेशकों को विकसित भारत के निर्माण में सह निर्माता के रूप में देखता है।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्ट्स अ फरीदाबाद रेजिडेंट फॉर हार्बरिंग टेररिस्ट उमर उन नबी इन अ दिल्ली टेरर ब्लास्ट केस।
संघ लोक सेवा आयोग अपनी शताब्दी का वर्ष मना रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में आयोग की भूमिका की सराहना की है।
एंड यूनाइटेड नेशंस बिगिंस प्रोसेस टू अपॉइंट नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल, कॉल्स ऑन मेंबर स्टेट्स टू प्रायोरिटाइज नॉमिनेशंस ऑफ वीमेन कैंडिडेट्स। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India. And today we will talk about Constitution Day and the National Milk Day. So to start off with the first topic, that is the Constitution Day. Well, today we bring you a very special broadcast. As the morning sun rises over our vibrant nation, we gather to celebrate a day that shaped the very identity of India, Constitution Day, or as we proudly call it, Samvidhan Divas. Every year on the 26th of November, we commemorate the historic moment when a constitution was adopted in the year 1949. Imagine the scene: the Constituent Assembly, a group of passionate leaders, freedom fighters, scholars and visionaries, sitting together after years of debate, discussion and dedication, finally giving India its guiding document, a constitution that would lay the foundation of justice, liberty, equality and fraternity.
लेकिन दोस्तों, कहानी और भी गहरी है। दरअसल यह ऐतिहासिक दस्तावेज 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ, जिस दिन को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाए जाने से ही चिंगारी भड़की, वो क्षण जब एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत के सपने ने कानूनी और नैतिक रूप में आकार लिया। ये संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है और इसके पीछे कारण भी हैं। ये हमारे देश की विविधता, हमारे लोगों की आकांक्षाओं और इतिहास से मिले सबक को समाहित करता है। ये हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और हमारे कर्तव्यों को रेखांकित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।
Yes, and of course, we cannot speak of the Constitution without honoring the remarkable contributors behind it, especially Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, a visionary who believed deeply in justice and equality. His tireless efforts, along with the contributions of leaders like Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, and many others, helped craft a document that has stood strong through changing times.
जी हाँ, लेकिन संविधान दिवस सिर्फ पीछे मुड़कर देखने का दिन नहीं है, ये अपने भीतर झांकने का अवसर भी है। ये हमें अपने मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और सुरक्षा के अधिकार का सम्मान करने की याद दिलाता है, साथ ही अपने मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करने की याद हमको दिलाता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और सद्भाव को बढ़ावा देना। आज का दिन उन विशेषताओं का जश्न मनाने का दिन है जो हमारे लोकतंत्र को वास्तव में अद्वितीय बनाती हैं, जनता की भागीदारी, आवाज और शक्ति। हम में से हर व्यक्ति अपने कार्यों, अपने विकल्पों और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने राष्ट्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका को निभाता है।
Yes, Munish, and let's also remember the beautiful words of a preamble which begins with "We, the people of India." A reminder that the Constitution belongs to all of us. It is not just a legal text, but a promise of justice, liberty, equality, and fraternity for every citizen. And as we celebrate Samvidhan Divas today, let us reflect on this promise. Let us pledge to be informed, responsible, and compassionate citizens. Let us respect our rights and honor our duties. And above all, let us work towards building an India that stands strong in unity and shines in diversity.
हमारे सभी श्रोताओं को गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन भर की और भी विचार उत्तेजक कहानियों, देशभक्ति गीतों और विशेष कार्यक्रमों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
Yes, and now let's move on to a second topic in a Dateline section, that is the National Milk Day. Well, November 26th, that is today, is also the day that celebrates a revolution, a white revolution. Yes, today is the National Milk Day. India's tribute to the legendary Dr. Varghese Kurien, the man who changed the destiny of dairy in a country. And that's right, today we honor the visionary who turned a milk deficient nation into the world's largest milk producer. He didn't just bring milk to millions, he brought dignity, opportunity and prosperity to the rural heart of India.
दोस्तों चलिए आपको एक पल के लिए ले चलते हैं पीछे। 1950 का भारत संघर्ष कर रहा था, दूध जो सबसे जरूरी खाद्य पदार्थों में से एक था वो दुर्लभ था, किसानों का शोषण हो रहा था, आपूर्ति श्रृंखला टूट चुकी थी, लेकिन गुजरात के आणंद में कुछ असाधारण घटित हो रहा था। वर्गीज कुरियन नाम का एक युवा इंजीनियर शुरुआत में अनिच्छा से एक बॉन्ड भरने के लिए आया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा शहर एक ऐसे आंदोलन का जन्म स्थान बन जाएगा जो लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल देगा।
Yes, and with the support of leaders like Tribhuvan Das Patel and the incredible strength of India's farmers, Kurien helped build a cooperative model. A model that believed in one simple principle. The farmer should own the dairy and the profits should belong to the farmer. And thus the milk cooperative was born.
और यहीं से चिंगारी पूरे भारत में फैल गई। दूध संग्रहण केंद्र खोले गए, चिलिंग प्लांट लगाए गए, नई तकनीकें आईं और पहली बार, जी हाँ, पहली बार किसानों को अपने उत्पाद, अपनी कीमतों और अपने भविष्य पर नियंत्रण मिल गया। और यह आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास का कार्यक्रम बन गया। डॉक्टर कुरियन की रणनीतियों और अथक समर्पण की वजह से भारत दूध की कमी और निर्भरता से निकलकर दूध के मामले में बन गया आत्मनिर्भर।
Yes, absolutely. And today, India proudly produces enough milk to feed its people and export to others, a transformation that the world still admires. But who was Dr. Kurien beyond the white revolution? Well, he was a fearless innovator, a humanitarian at heart, and a firm believer in rural empowerment. He often said, India's strength lies in its villages. If we uplift our farmers, we uplift our nation.
बिल्कुल अभिषेक, ये तो उनका एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कथन है जिससे डेयरी क्षेत्र में वैज्ञानिक सोच आई, महिलाओं को सहकारी समितियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिला, व्यवस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई और इस बात पर जोर दिया गया कि किसानों का शोषण फिर कभी ना हो। उनकी विरासत, हर डेयरी सहकारी समिति, हर गांव के दूध के ट्रक, बच्चे को दिए जाने वाले हर गर्म दूध के ग्लास, और हर उस अमूल बिल बोर्ड में जीवित है जो हमारे चेहरों पर मुस्कान ला देता है।
Yes, so Munis, how do we celebrate the National Milk Day? Well, all across the country, schools, dairy boards and communities are organizing milk awareness camps, nutrition talks, cooperative success story sessions, exhibitions displaying dairy innovations, fun activities for kids like Know Your Milk games, and of course, free milk distribution in many places.
जी हाँ, ये दिन हमें पोषण के महत्व, हमारे किसानों के मूल्य और भारत को पोषित रखने वाले अविश्वसनीय टीम वर्क की याद दिलाने का दिन है। आइए हम उस व्यक्ति को भी सलाम करें जिसने इसे संभव बनाया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनकी जयंती भी आज हम मना रहे हैं और जिनके बारे में बात करेंगे। उन व्यक्तित्वों की जब हम बात करते हैं, आज है जिनका जन्मदिन। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी दूरदर्शिता आज भी हमारे घरों को भर रही है, हमारे गांवों को बना रही है मजबूत और हमारे दिलों को कर रही है प्रेरित।
So on this National Milk Day, let's take a moment to appreciate the millions of dairy farmers who wake up before sunrise every single day, who brave cold mornings, long walks and hard labor, so that we can enjoy the simple comfort of a morning cup of tea, a bowl of curd, a scoop of ice cream or a slice of cheese. And as Dr. Kurian famously said, we are not doing it for the cow, we are doing it for the farmer. So a very powerful reminder of what true development looks like, isn't it, Munish?
बिल्कुल अभिषेक, दरअसल किसानों, सहकारी समितियों, डेयरी श्रमिकों और हमारे राष्ट्र को पोषित करने वाले सभी लोगों के लिए
हैप्पी नेशनल मिल्क डे।
तो दोस्तों, उठाइए दूध का गिलास और मनाइए श्वेत क्रांति का जश्न जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और दोस्तों, अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या है उनके पास विशेष। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का 56वां संस्करण अपना सिनेमाई जादू बिखेर रहा है और हमारे संवाददाता ने बताया कि फिल्मोत्सव में आज कई शानदार फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिनमें कई सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फिल्में भी शामिल हैं।
इफ्फी में आज मैक्सिकन ड्रामा फिल्म द डेविल स्मोक्स एंड सेव्स द बर्ड मैचेस इन द सेम बॉक्स का सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म श्रेणी में प्रीमियर हुआ। इसके अलावा स्पेनिश फिल्म फॉरेंसिक्स और जर्मनी की जेनी ने मूव्स टू द कंट्री का एशियन प्रीमियर किया गया। दर्शकों को लिविंग द लैंड, द वेव, लेफ्ट हैंडेड गर्ल, ड्रीम्स और व्हाइट स्नो जैसी कई शानदार फिल्में देखने को मिल रही हैं। इस वर्ष इफ्फी में दर्शकों द्वारा क्षेत्रीय सिनेमा को काफी सराहा जा रहा है। फिल्म प्रेमियों को आज भारतीय पैनोरमा में गोंधल, भाई मोंदा 2.0, पत्रलेखा, इम्बू और कमिटी कोरुल्लु जैसी फिल्में दिखाई जा रही हैं। वहीं इफ्फी के इंडियन पैनोरमा खंड में भूपेन हजारिका पर बनी एक खास डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की जा रही है। इस फिल्म की निर्देशिका नम्रता दत्ता ने आकाशवाणी समाचार से अपने विचार साझा किए।
मैंने ये फिल्म बनाया पत्रलेखा क्योंकि इस टाइम भूपेन दा का सेंटेनरी चल रहे है 100 ईयर्स वाला फ्रॉम 8 अगस्त दिस ईयर, तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए भूपेन दा को लेकर। तो मैंने सोचा कुछ अलग करो क्योंकि भूपेन के बहुत सारे गाने हैं, तो सब लोग उसको गाने गाते हैं या कुछ वो लेकर बोलते हैं, लेकिन उसको लिरिक्स जो है उसके डेप्थ में जाकर कुछ करना है मुझे।
आज ही चौक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पद्मभूषण अमृत लाल नागर पर बनी डॉक्यूमेंट्री इफ्फी में दिखाई गई। फिल्म के निर्माता सविता शर्मा नागर और निर्देशक राजेश अमरोही ने फिल्म के बारे में आकाशवाणी समाचार को जानकारी दी।
देखिए, जो भारत में 19वीं और 20वीं सेंचुरी है वो बहुत ही उथल पुथल का दौर रहा है। भारत ने seen very turbulent times और उसने हमारी सोच को बहुत प्रभावित किया। जो भी हमारे perception सोच है वो उस पर बहुत बेस रखता है। तो उस दौर को समझना, अगर 20th century को समझना है उसके character को, तो उसमें एक अमृतलाल नागर जो हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है।
दूसरा मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिनका साहित्य में सबसे शीर्ष स्थान है। उनके बाद यदि कोई नाम आता है तो वो अमृतलाल नागर जी का है। प्रेमचंद जी गांव के आंचल को हमारे तक लेकर आए और नागर जी नगर की कहानियों को, नगर के किस्सों को, नगर के किरदारों को हमारे तक लाते हैं।
कला अकादमी में आज फिल्म समीक्षक की भूमिका और उसके व्यापक प्रभाव पर एक विशेष फिल्म क्रिटिक राउंड टेबल संवाद का आयोजन किया गया। पत्रकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारद्वाज रंगन ने इस अवसर पर कहा कि 21वीं सदी में फिल्म समीक्षा पहले की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक हो गई है और अभिव्यक्ति पर लगे कई बंधन कम हुए हैं। इसके अलावा आज कला आदमी में उरुमी संजू डंकी शेरशाह तथा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाली एका लखानी ने मास्टर क्लास ली। इस दौरान उन्होंने फिल्मी पात्रों वर्तमान समय की आवश्यकताओं और कहानी की मांग के अनुसार परिधानों की रूपरेखा तैयार करने की बारीकियों पर चर्चा की। चर्चा के माध्यम से प्रतिभागियों को डिजाइन प्रक्रिया शोध रंगों के मनोविज्ञान और दृश्य सौंदर्य शास्त्र के महत्व के बारे में गहन जानकारी दी गई। परिक्रमा के लिए आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार आकाशवाणी समाचार पणजी गोवा।
Cancer disease is a major concern for India and the number of is increasing rapidly. The cancer cases are higher in the northeastern and northern region of India and the lifetime risk of developing cancer in India is approximately 1 in 9 people. We have more from a correspondent.
In a groundbreaking scientific achievement, Cotton University of Guwahati has developed India's first indigenous accelerator-driven boron neutron capture therapy technology, a next-generation cancer treatment expected to greatly enhance outcomes for aggressive and radio-resistant tumors. The Cotton University Particle Accelerator Center Northeast, which has designed a specialized beam-shaping assembly completely in-house. This is significant because BNCT system worldwide face high cost and strict international patent restrictions, making indigenous development a challenging task. Cotton University's success opens the door for affordable advanced cancer therapy options in India. The research was published recently in the internationally recognized journal Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B. The work was led by researcher Dimple Saikia of the State Cancer Institute, Guwahati Medical College and Hospital, under the supervision of Professor J.J. Das of Cotton University, with strong collaboration from several national institutions including UGC, DAE, BARC, IUAC, NEHU, Guwahati University, Tezpur University, and Boroland University. With this breakthrough, India moves a major step closer to offering world-class cancer treatment developed entirely on home soil. Aminul Haq Zuddar, Akashvani News, Guwahati.
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR किया जा रहा है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। SIR के तहत गणना प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है जो 4 दिसंबर तक चलेगी। मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची अगले साल 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
श्री विजयपुरम क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान ने इस सप्ताह विशेष सक्रियता दिखाई। बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs ने घर घर जाकर मतदाता सूची का सूक्ष्म सत्यापन किया और नए 18 वर्षीय नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरवाए। वहीं मृत स्थानांतरित तथा डुप्लीकेट नामों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाने की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की गई। जिन मतदाताओं के नाम पता या उम्र में त्रुटियां थी उनके लिए फॉर्म 8 के तहत सुधार किए गए। स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना प्रसार अभियान चलाया गया जिसमें नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता मानकों की जानकारी दी गई। गांव में विशेष पंजीकरण शिविर दस्तावेज जांच काउंटर और बूथ स्तरीय सहायता केंद्र स्थापित किए गए जहां लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पंजीकरण एवं सुधार प्रक्रिया पूरी कराई। अधिकारियों के अनुसार SIR का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूर्ण अध्यतन और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे। श्री विजयपुरम में यह अभियान सफलतापूर्वक और व्यापक जन सहभागिता के साथ संपन्न हुआ। श्री विजयपुरम से संपादक अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
Zoological Survey of India scientists have published a study which will help in understanding wildlife forensics and help protect India's biodiversity. We have a report.
A new study by the Zoological Survey of India ZSI in collaboration with Pukyong National University in South Korea has created a rapid and non-invasive method to identify mongoose hair from confiscated items. For the first time, researchers have developed a complete trichotaxonomic system to distinguish all 6 mongoose species found in India. The small Indian mongoose, Indian grey mongoose, Indian brown mongoose, ruddy mongoose, the crab-eating mongoose, and the striped-necked mongoose play a crucial ecological role. Yet, nearly 1 lakh of these animals are killed every year year, mostly for the paint brush industry, where their hair is prized. An estimated 50 mongooses are slaughtered to produce just 1 kilogram of usable hair. Despite being placed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act, mongoose hair continues to be trafficked across major routes in Uttar Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu and smuggled internationally through Delhi, Mumbai and Kolkata. With modern paintbrush processing destroying DNA, identifying mongoose hair has long been a challenge. The new method, based entirely on hair morphology and advanced statistical analysis, now offers enforcement agencies a fast, reliable identification tool. Sushmita Mondol, Akashvani, Kolkata.
दोस्तों आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
Yes, and we start off with football. And in football, India will lock horns with Chinese Taipei in the AFC Under 17 Asian Cup South Arabia 2026 qualifiers Group D clash at Eka Arena in Ahmedabad, Gujarat today. The match will start at 7:30 p.m. Gujarat State Football Association has announced free entry for fans to the stadium. The association has also urged fans to come and cheer for the young Indian side in large numbers. In Group D points table, India currently stands at 4th spot, while Chinese Taipei are 5th. Only the group winners will qualify for the AFC Under 17 Asian Cup South Arabia next year. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty snapped the 3-day losing streak today, closing over 1.2% higher. The Sensex surged 1,023 points to close at 85,610, while the Nifty advanced 321 points to settle at 26,205.
और दोस्तों आइए अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों को भी जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
Today is Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, which is celebrated in our country on the 26th of November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India on this day in 1949.
On 26th November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26th of January 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment, on 19th of November 2015, notified the decision of the Government of India to celebrate the 26th day of November every year as Constitution Day to promote constitution values among citizens.
The Constitution of India was framed by the Constituent Assembly, set up under the Cabinet Mission Plan of 1946. The Assembly held its first meeting on the 9th of December 1946. And elected Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member of the Assembly, as the provisional president. Pandit Jawaharlal Nehru called upon the members to take the pledge of dedication.
On December the 11th, 1946, the Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its permanent chairman. Highlighting the role of the Constituent Assembly in an infant nation, Dr. Rajendra Prasad said,
"Main ye bhi manta hoon ki is Constituent Assembly ko पूरा अख्तियार मुकम्मल अख्तियार इस बात का है कि वो अपनी कार्रवाई जिस तरह से चाहे करे इसके अंदर वो जो कुछ करना चाहे करे और इसमें किसी भी बाहर की ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाइयों में वो कुछ भी हस्तक्षेप या दस्तंदाजी कर सके.
Members of the Constituent Assembly represented the different ideologies and diverse culture of our great nation. The Constituent Assembly set up 13 committees for framing the Constitution. The drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar was charged with the Herculean task of preparing the draft Constitution.
Despite the diverse opinions, the Constituent Assembly solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
The Constitution of India is the longest written constitution in the world, containing 395 articles, 22 parts and 12 schedules. The sections on fundamental rights and fundamental duties in the Constitution of India lay down a foundation for the appropriate behavior and conduct of citizens.
The directive principles guide that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting, as effectively as it may, a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.
People of India are the ultimate custodians of the Constitution. It is in them that sovereignty vests, and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution by following it, by protecting it, and by preserving it to make it more meaningful with words and deeds.
Yes, and we are also remembering Hemant Kamlakar Karkare, who passed away this day in 2008. He was the chief of the Mumbai Anti-Terrorism Squad, ATS. He was killed in action during the 2008 Mumbai attacks. In 2009, he was posthumously given the Ashok Chakra, India's highest peacetime gallantry decoration. And Karkare succeeded KP Raghubanshi as the chief of ATS in January 2008 and was eventually succeeded by Raghubanshi after he was shot dead on 26 November 2008. He was credited with solving the serial bombing cases in Thane, Vashi and Panvel and led the investigation of the 2008 Malegaon blasts.
Aur dosto baat kare janmdin ki to jaisa ki humne aapko bataya tha aaj rashtriya dugdh divas hai aur isko sambhav banane wale yani bharat mein dugdh kranti ke jo janak the Varghese Kurien sahab unhi ki jayanti hai aaj aur unke karyon ke liye unhe anek puraskaron se सम्मानित किया गया जिनमें पद्म विभूषण है और इसके साथ ही रेमन मैग्सेसे कार्नेगी बटलर शांति पुरस्कार और अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी नवाजा गया था कुरियन साहब को.
Yes, and Charles Monroe Sparky Schulz was born on this day in 1922. He was an American cartoonist who created the long-running comic strip Peanuts, which features the characters Charlie Brown and Snoopy. Schulz was born in Minneapolis, Minnesota, and developed an interest in drawing while growing up in St. Paul. He was conscripted in 1943 and served in the United States Army during the final years of World War II. After returning to Minnesota, Schulz began his comic strip career with Little Folks in 1947. In 1950, Schulz redeveloped Little Folks as a four-panel comic strip and submitted it to United Features Syndicate, who renamed it Peanuts and began publishing that October. Schulz relocated to Northern California with his family in 1958. Beginning with a Charlie Brown Christmas in 1965, he helped write several animated television specials and four animated films based on his characters. He continued drawing Peanuts until his death in 2000.
Aur dosto, aaj hi hai janmdin mashhoor cinematographer Venkatrama Pandit Krishnamurti ka, jinhone गुरु दत्त के साथ मिलकर कई फिल्मों की शानदार प्रस्तुति की और खास तौर पर इन फिल्मों में याद करते हैं हम प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद और साहब बीबी गुलाम जैसी शानदार फिल्मों को. तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म प्यासा से एक गीत का ये कंश.
ये इंसान के दुश्मन समाज की दुनिया ये महलों.
Yes, and Tina Turner was born on this day in 1939. She was a singer, songwriter, actress and author. Dubbed the Queen of Rock and Roll, Turner's vocal prowess, dynamic voice and electrifying stage presence helped to break racial and gender barriers in rock music. And she's one of the best-selling music artists of all time with estimated sales of over 100 million records worldwide. Let's listen in to a hit track of hers. And also John Graham McVie was born on this day in 1945. He's a British bass guitarist. He's best known as member of the rock bands John Mayall and the Blues Breakers from 1964 to 1967 and Fleetwood Mac since 1967. His surname combined with that of drummer Mike Fleetwood was the source for the band's name. Let's listen in to his hit track Dreams.
Now there you go again, you say you want your freedom. Well, whoever.
दोस्तों वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो दीजिए आज्ञा मुनीश शर्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहें तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और साथ ही हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी आप हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।